नमस्कार भारत, रविवार 16 अगस्त, मैं हूं निखिल रंजन। जापान ने पहली बार दूसरे विश्व युद्ध में अपनी हरकतों पर जताया अफसोस, एक मिनट का रखा मौन, ब्रिटेन में विजय दिवस का उत्सव। पाकिस्तान में ISI के पूर्व प्रमुख हमीद गुल का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से UAE के दौरे पर, 30 साल पहले इंदिरा गांधी ने की थी यात्रा। आजादी की वर्षगांठ पर भरत कुमार के गीतों की चर्चा।
है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला।
होगी अखबारों की सुर्खियां भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
BBC समाचार, संदीप सोनी से। जापान के सम्राट अकिहितो ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान की भूमिका पर गहरा अफसोस जताया है। सम्राट अकिहितो ने यह बात दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के 70 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कही। वर्ष 1941 में जापान के अचानक हमले में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसके बाद अमरीका युद्ध में शामिल हो गया था। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रही डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा की इराक नीति का समर्थन किया है। रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार जेब बुश ने इराक में अस्थिरता के लिए राष्ट्रपति ओबामा की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके जवाब में इराक का जिक्र करते हुए हिलेरी क्लिंटन ने कहा,
It's an area that is so deeply distressing to read about what's going on there. So I think we have to.
ये वो इलाका है जहां हालात बेहद खराब हैं। वहां के हालात समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें और कदम उठाने की जरूरत है। मुझे आशा है कि हम वैसा ही करेंगे ताकि इस्लामिक स्टेट को इराक से खदेड़ा जा सके। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रही डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। इराक की राजधानी बगदाद में सिलसिलेवार बम धमाके हुए हैं, जिनमें कम से कम 20 लोग मारे गए हैं और कई अन्य जख्मी हुए हैं। सबसे अधिक लोग उस कार बम धमाके में मारे गए जो शहर के शिया आबादी वाले इलाके में हुआ। ये वही इलाका है जहां इस हफ्ते की शुरुआत में ज़बरदस्त धमाके में 50 से अधिक लोग मारे गए थे। बगदाद में हाल के महीनों में इस तरह के कई हमले हुए हैं। इनमें से अधिकतर हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने ली है। इटली की नौसेना का कहना है कि भूमध्य सागर में एक नाव में कम से कम 40 प्रवासी मृत पाए गए हैं। नाव में सवार 320 अन्य लोगों को लीबिया के तट पर बचा लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भूमध्य सागर पार करके यूरोप पहुंचने की कोशिश में इस साल 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इटली ने प्रवासियों के संकट के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के विवादित पूर्व प्रमुख हमीद गुल की ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई है। वे 79 वर्ष के थे। उन्हें अफगानिस्तान में जिहाद और भारत प्रशासित कश्मीर में प्रतिरोध का बड़ा समर्थक और सहायक माना जाता था। जनरल हमीद गुल को कट्टर इस्लामी विचारों के लिए भी जाना जाता था। वे भारत और अमरीका के भी कटु आलोचक थे। चीन के शहर तियानजिन में बीते बुधवार हुए धमाके में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 100 से अधिक हो गई है। खबरों के मुताबिक घायल हुए 700 लोगों में से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। धमाके के बाद लोग जहरीले रसायनों के संपर्क में ना आएं, इसके लिए 3 किलोमीटर के दायरे में इमारतों को खाली कराया गया है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत, BBC रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज आपके साथ निखिल रंजन। शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबरों से करते हैं। कल भारत में आजादी के पर्व के साथ ही ब्रिटेन और जापान में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने की 70वीं सालगिरह मनी। ब्रिटेन में एक तरफ पूर्व सैनिकों और युद्धबंदियों ने परेड निकाली तो दूसरी तरफ चर्च में प्रार्थना सभा हुई। उधर जापान में सम्राट अकिहितो ने पहली बार इस युद्ध पर गहरा अफसोस जताया है। हालांकि कोरिया और चीन ने उनके बयान की आलोचना भी की है। BBC संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए संदीप सोनी से।
भारत में जिस वक्त जश्न आज़ादी शाम की तरफ बढ़ रही थी, ब्रिटेन में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने का जश्न शुरू हो रहा था। 70 साल पहले का वो दिन जब जापान ने आत्मसमर्पण किया और युद्ध खत्म हुआ। लंदन के हॉर्स गार्ड्स परेड में प्रिंस ऑफ वेल्स और डचेस ऑफ कॉर्नवेल की मौजूदगी में जब दूसरे विश्व युद्ध के सिपाही जमा हुए तो ब्रिटेन के नए पुराने विमानों की आकाश में कदम टालने मानो उनका इस्तकबाल किया। विमानों की परेड के बाद पूर्व सिपाही अपने सैन्य लिबास में सड़कों पर निकले तो उन्हें सम्मान देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उधर लंदन की सेंट मार्टिन इन द फील्ड्स चर्च में खुद महारानी और ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने पूर्व युद्ध बंदियों की याद में हुई प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि उन लोगों को याद किया जाए जिन्होंने जान गंवाई। विजय दिवस ब्रिटेन की सेना के इतिहास में बेहद मुश्किल दिनों की समाप्ति का उत्सव है जिसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक युद्धबंदी शिविरों की क्रूरताओं को झेलकर भी जिंदा बच गए। उन शिविरों में बीमारियों का बोलबाला होने के साथ ही भोजन और पानी की भीषण कमी थी। पूर्व युद्धबंदी मॉरिस नायलोर ने इस मौके पर कहा,
I feel lucky to have survived so long and still be able to address you.
मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि इतने दिनों तक जीवित रहा और आज आपसे अपनी बात कह रहा हूं। मैं उन परिवारों के लिए उदास हूं जो बंदी बनाए जाने के कारण मारे गए।
एक अनुमान के मुताबिक जापान के खिलाफ युद्ध में ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ के 71,000 से ज्यादा सैनिकों की जान गई और 12,000 से ज्यादा युद्धबंदियों ने जापान के कब्जे में अपनी जान गंवाई। ऐसा माना जाता है कि इस संघर्ष में जापान के करीब 25,00,000 सैनिकों और आम लोगों की भी मौत हुई। टोक्यो में इस मौके पर बुलाई गई शोक सभा में सम्राट अकिहितो ने दूसरे विश्व युद्ध पर पहली बार गहरा अफसोस जताया। संघर्ष खत्म होने की 70वीं सालगिरह पर उन्होंने कहा कि वो भयावह घटना कभी भी नहीं दोहराई जानी चाहिए।
अतीत की छाया और दिमाग में पिछली लड़ाई पर गहरे अफसोस के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जंग का वो विध्वंस कभी दोहराया ना जाए। अपने सब लोगों के साथ मैं हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं उन लोगों को जिन्होंने जंग के मैदान में या फिर उससे बाहर अपनी जान गंवाई, और दुनिया की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।
इस मौके पर प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी मौजूद थे। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में अपने देश की तरफ से की गई कार्रवाइयों पर गहरा दुख जताया, लेकिन दक्षिण कोरिया और चीन ने उनकी आलोचना की है। इन देशों का कहना है कि जापान अपनी कार्रवाइयों से हुए नुकसान की भरपाई करने में नाकाम रहा है। यूरोप में ये लड़ाई मई 1945 में ही खत्म हो गई थी, लेकिन मित्र देशों और जापान के बीच युद्ध जारी रहा। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापानियों ने समर्पण किया और तब युद्ध खत्म हुआ था।
ब्रिटेन और जापान में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की 70वीं सालगिरह मनी रिपोर्ट सुना रहे थे संदीप सोरी। और अब खबर पाकिस्तान से है। आपको हमीद गुल का नाम जरूर याद होगा। पाकिस्तान की खुफिया सेवा ISI के पूर्व प्रमुख हमीद गुल की बीती रात मौत हो गई। वो 79 साल के थे और भारत के साथ ही अमरीका के प्रति कटु रुख रखने के कारण अक्सर सुर्खियों में बने रहते थे। भारत और अफगानिस्तान में चरमपंथ और हिंसा को बढ़ावा देने के पीछे भी उनकी भूमिका पर अक्सर बात होती है। उनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मैंने कुछ देर पहले बात की कराची में BBC उर्दू सेवा के सहयोगी शाजिद जिलानी से।
उनके परिवार का कहना है कि उनको कुछ दिनों से सर में दर्द था और फिर लोकल टाइम के हिसाब से 9 बजे रात के जो है काफी उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें मरी में एक हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उस वक्त तक उनकी मौत हो चुकी थी। और उनका परिवार ये कह रहा है कि उसकी वजह जो है उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है और उस वजह से उनकी डेथ हुई है। तो उनकी उम्र थी 79 ईयर्स की मौत के कुछ घंटों के बाद ही काफी उनको ट्रिब्यूट्स सामने आना शुरू हो गए लोकल मीडिया पे, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, और वो जो पॉलिटिशियंस हैं जो यहाँ पे आर्मी के करीब समझे जाते हैं या जो इस्लामिस्ट माइंड के हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है उनको काफी ट्रिब्यूट्स पेश किए हैं।
हामिद गुल साहब एक विवादित छवि भी रखते रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासतौर से भारत और अमेरिका के प्रति जो उनका रुख रहा है उसको लेकर के उनकी कई जगहों पर आलोचना भी होती रही है, लेकिन पाकिस्तान में लोग उनको किस तरह से देखते हैं?
پاکستان میں حمید گل صاحب ایک کانٹروورشل شخصیت رہے ہیں, اور وہ لوگ جو آرمی کے قریب ہیں یا جو اسلامسٹ جہادی مائنڈ سیٹ کے ہیں یا جو بھارت اور امریکہ کے خلاف رہے ہیں, وہ انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کھل کر بولتے تھے. دیکھیں وہ 87 سے 89 صرف 2 سال رہے آئی ایس آئی کے چیف, کے بعد 92 میں وہ ریٹائر کر گئے, لیکن پچھلے 2 دشکوں سے زیادہ کے عرصے میں وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ چھائے رہے. جب بھی انٹرنیشنل میڈیا کو پاکستان میں آرمی کی کسی بھی بات پہ پوچھنا ہوتا تھا کچھ, تو وہ حمید گل کو پریفر کرتے تھے کیونکہ حمید گل بہت ہی آؤٹ لینڈش قسم کی باتیں کرتے تھے جس سے باہر کی دنیا کافی ہل جاتی تھی. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ افغانستان ہو یا کشمیر کا مدعا ہو یا بھارت کے ساتھ رشتے ہوں یا امریکہ کے ساتھ, حمید گل جو ہیں وہ ایک مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کرتے تھے.
افغانستان میں چرم پنتھ ہے, اس کو سمرتھن دینے کی کیا وجہ تھی ان کے من میں؟
دیکھیں 80 کے دشک میں پوری دنیا ہی سپورٹ کر رہی تھی وہاں پہ مجاہدین کو, امریکہ پیسے دے رہا تھا اور ہتھیار دے رہا تھا, سعودی عرب بھی دے رہا تھا, اور وہ سب پاکستان کو دے رہے تھے کہ آپ مجاہدین کی ہمت افزائی کریں. تو اس وقت جو ہے مجاہدین کا ساتھ دینا اچھا سمجھا جاتا تھا, اور اس کام میں پاکستان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, آئی ایس آئی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. لیکن جب سوویت یونین کو وہاں پہ شکست ہوئی اور 87-88 میں سوویت یونین وہاں سے چلتا بنا, تو امریکہ کا وہاں پہ انٹرسٹ ختم ہو گیا, اور اس بات پہ حمید گل جیسے پاکستانی جنرلز کو بڑا غصہ تھا کہ آپ نے افغانستان میں اتنی لڑائی لڑی لیکن اب آپ اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے یا اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے آپ دلچسپی نہیں لے رہے. اور یہی وہ ٹائم تھا جب حمید گل جیسے لوگوں نے جو بھی فنڈز آئے ہوئے تھے, ڈالرز آئے ہوئے تھے, ہتھیار آئے ہوئے تھے افغانستان کے لیے, اور جو بھی انہوں نے مجاہدین تیار کیے تھے وہاں کے لیے, ان کو ڈائیورٹ کرنا شروع کیا کشمیر کی طرف. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 89-90 میں پھر کشمیر میں جو ہے بہت ساری انسرجنسی شروع ہو گئی, وہاں پہ ہلاکتیں اور حملے اور یہ شروع ہو گئے. تو وہ افغانستان اور کشمیر اس طرح سے ملے ہوئے تھے کہ بیچ میں پاکستان جو ہے وہ اس کو مینیج کر رہا تھا, اور حمید گل جیسے لوگوں کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول تھا.
بھارت کے ورودھ کا مسئلہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن امریکہ کا ورودھ وہ کرتے تھے اور کھلے طور پر کرتے تھے, تو کیا کبھی پاکستان سرکار کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ ان کے بولنے پر یا ان کی گتیویدھیوں پر روک لگانے کی کوشش کرے؟
نہیں, کیونکہ پاکستان آرمی کے اندر یہ خاصا بلیف ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو یوز کیا ہے, پاکستان کو مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا, اور یہ ہمارے جو ٹاپ کے جنرلز بھی ہیں ان میں بھی یہ بلیف کافی پایا جاتا ہے کہ امریکہ نے اوپر سے کچھ کہتا ہے اور اندر سے آپ کو انڈرمائن کرتا ہے. اور حمید گل کھل کر اس کو ظاہر کرتے تھے, اسی لیے وہ طالبان کے سپورٹر تھے. وہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے کبھی بھی کنڈیم نہیں کیا, سپٹمبر 11 کے جو اٹیکس ہیں اس پہ بھی ان کی اپنی ایک تھیوریز تھیں.
پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے پورو پرمکھ حمید گل کا ندھن. زیادہ جانکاری دے رہے تھے کراچی سے بی بی سی اردو سیوا کے سہیوگی شازیب جلانی. نمسکار, بھارت آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈیو پر نکھل رنجن کے ساتھ, اور اب خبر بھارت سے. پردھان منتری نریندر مودی 2 دنوں کی یاترا پر آج سنیکت عرب امیرات پہنچ رہے ہیں. قریب 30 سالوں میں کسی بھارتی پردھان منتری کی سنیکت عرب امیرات کی یہ پہلی یاترا ہے. ان سے پہلے اندرا گاندھی وہاں گئی تھی. یو اے ای بھارت کا دوسرا سب سے بڑا ویاپارک ساجیدار ہے, اس معنی میں یہ یاترا بے حد اہم ہے. ونیت کھرے نے سنیکت عرب امیرات میں بھارت کے رائے دوت رہے عشرت عزیز سے اس یاترا کی اہمیت پر بات کی.
یہ وزٹ بہت سگنیفیکنٹ ہے, اور جیسا آپ کو معلوم ہے جو نیبرنگ کنٹریز تھے یعنی بھوٹان اور نیپال کو چھوڑ کے یہ سٹینڈ الون وزٹ ہے. زیادہ تر وزٹس جو ہوئی ہیں ان کی وہ کئی کنٹریز کی ایک ساتھ ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بائی لیٹرل ہماری ریلیشن شپ ہے اور جو اس کی امپورٹنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل صحیح ہے کہ بائی لیٹرل وزٹ ہو اور جس کا کی اور کنٹریز کے ساتھ لنکڈ نہ ہو.
جی, لیکن تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جو بھارتی نیتا ہیں وہ امریکہ, برٹن, یورپ زیادہ جاتے ہیں, لیکن جو پشچم ایشیا, مڈل ایسٹ کا جو علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ بھارتی رہتے ہیں, وہ کیا نیگلیکٹ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت, وہاں اتنی یاترائیں نہیں ہو پاتی ہیں؟
میں یہ کہوں گا کہ جتنی یاترائیں ہونی چاہیے اس ریجن میں, خاص طور سے گلف میں, وہ نہیں ہوئی ہیں ابھی تک.
تو کیا چنوتیاں ہیں بھارتی پردھان منتری کے لیے, کس طرح کی چنوتیاں ہوں گی؟ آپ وہاں امبیسڈر رہے ہیں.
چنوتی یہ ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو کیسے اور اسٹرینتھن کیا جائے, اور خاص طور سے اکنامک जो फील्ड है उसमें रिलेशनशिप को कहां तक और आगे बढ़ाया जाए, ये चुनौती है।
लेकिन हम हमेशा कहानियां सुनते हैं शरत अजीज साहब की, जो भारतीय रह रहे हैं वहां पर वो बड़े खराब वर्किंग कंडीशन में रह रहे हैं, क्या इस तरह की जो बायलैटरल विजिट्स होती हैं उनमें ये सब चीज़ें उठती हैं, या फिर ये लगातार जो भारत यूएई के बीच में बातचीत होती रहती है डिप्लोमेट्स के माध्यम से, उसमें ये बातें उठती हैं?
देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक जो हमारे वहाँ पे भारतीय वर्कर हैं और जो भी लोग रह रहे हैं उनकी ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। वो कहना चाहिए प्रॉब्लम्स जो है वो एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। और मैं खुद वहाँ रह चुका हूँ, जैसा आपको मालूम है यूएई में भी था और मैं सऊदी अरेबिया में भी रह चुका हूँ, और दोनों जगह मिला के मैं 11 साल था। तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कि ये प्रॉब्लम होते हैं जहाँ इतने, जैसा आपको मालूम है कि यूएई में तो इस वक्त जो है कोई 2 मिलियन से ज्यादा है, सऊदी अरेबिया में भी 2 मिलियन कहा जाता है, 2 मिलियन और 7 लाख है, यूएई में 2.5 मिलियन से ज्यादा है। तो जहाँ इतने लोग होंगे वहाँ प्रॉब्लम्स तो होंगी, और प्रॉब्लम्स की कई वजह होती हैं। कभी कभी इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाता है ऑयल की प्राइस की वजह से, तो वर्कर्स को टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है, या ये कि और बहुत से प्रॉब्लम हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि जितने बड़े स्केल पे लोग वहाँ हैं उसको देखते हुए प्रॉब्लम बहुत कम है, और मैं समझता हूँ कि जनरल तरीके से उनकी और किस तरह से उनके हालात बेहतर किया जाए ये तो डिस्कस किया जा सकता है। इस वक्त कोई $40 बिलियन के रेमिटेंस आते हैं पूरे गल्फ से, यानी यूएई से ही नहीं, मगर यूएई का भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि यूएई में 2.5 मिलियन से ज्यादा इंडियंस हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर 7 मिलियन इंडियंस की वजह से $40 बिलियन आते हैं, तो उनका भी 15-16 बिलियन तो होना चाहिए आसानी से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात जा रहे थे, और उनके बारे इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनीत खरे ने बात की थी संयुक्त अरब अमीरात में भारत के पूर्व राजदूत इशरत अजीज से। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद के सहयोगी रहे अबू सालेम ने विशेष टाड़ा अदालत में हलफनामा दायर कर जेल अधीक्षक हीरालाल जाधव पर मानसिक दबाव डालकर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। सालेम मुंबई से सटे तालोजा कारागार में बंद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विनीत खरे ने ही बात की अबू सालेम की वकील सबा कुरैशी से।
ये हमने कंप्लेन फाइल की है, जो इन पर्सन फाइल किया अबू सालेम ने। जेल में जो नया सुपरिटेंडेंट आया है वो उनको काफी टॉर्चर कर रहा है, अकेला आइसोलेशन में रख रहा है, किसी को आजू बाजू आने नहीं दे रहा है, किसी से बात करने नहीं दे रहा है, और कुछ हवलदार को सामने बिठा के कंटिन्यूसली बोल रहा है कि चेहरे पे देखते रहो, मतलब हैरेसमेंट, ना बाथरूम जाने दे रहा है, ना खाना खाने दे रहा है बराबर से, कपड़े सिविल कपड़े नहीं पहन सकते, जो जो कोर्ट की ऑर्डर्स हैं उन किसी को ना मानते हुए उसको डिटेन करना चाह रहा है इन द सेंस। एंड उसकी जो मैटर्स लगते हैं अलग दूसरे स्टेट्स में वहां जाने नहीं दे रहा है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है, उसको प्रोडक्शन वारंट आते हैं, काफी तरह के अलग अलग तरीके के टॉर्चर कर रहा है। तो हमने, और इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि क्लाइंट कह रहा था हमारा कि वो सुसाइड कर लेगा, तो हमने एक कंप्लेन डाली है उसके खिलाफ टाडा कोर्ट में। अब उसके लिए उसने इंक्वायरी बिठाई है, जैसे रिप्लाई मांगा है, तो अब 19 को रखा है मैटर कोर्ट के सामने।
जैसा कि आप कह रही हैं इस पर इंक्वायरी होगी, अबू सालेम से भी पूछताछ होगी, जो जेल के अधिकारी हैं जो आरोप लगाया है अबू सालेम की ओर से उस पर जांच होगी, और फिर 19 को अदालत फिर इस मामले में एक कोई फैसला लेगी।
हाँ, जो हमने कंप्लेंट डाला है उसमें हमने यही कहा है कि इंक्वायरी की जाए, एक सुपरिटेंडेंट को बुलाया जाए कोर्ट में, जैसे वो हॉस्पिटल जाने नहीं देता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना है, कोर्ट का ऑर्डर है कि उसे हॉस्पिटल में भेजा जाए, फॉलो अप है, तो भी वो नहीं भेज रहा है। तो हमने कहा है कि आप जेल के डॉक्टर को बुलाएं, हमने वहाँ के लोगों को और जेल के, हमने खुद मांगा इंक्वायरी, तो हमने कहा है कि आप इनसे बुला के इनसे पूछो क्योंकि रीजंस क्या है जो कोर्ट के ऑर्डर्स होते हुए भी वो नहीं मान रहे और उसको इतने टॉर्चर कर रहे हैं। तो देखो, ये इंक्वायरी अभी जज बुला के उनको क्या करते हैं, कैसे पूछताछ होती है, क्या होता है, वो तो 19 को पता चलेगा।
अबू सालेम पर गंभीर आरोप हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर जिस पर गंभीर आरोप हैं उसकी बात को कितना सीरियसली लिया जाए?
गंभीर आरोप है लेकिन वो साबित थोड़ी हुए हैं अभी तक, और देखो अगर उस पर गंभीर आरोप है या ऐसे छोटे मोटे आरोप है, वो तो इंसान है ना, उसके बेसिक नेसेसिटीज को, उसके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेशन तो नहीं कर सकते ना। आप अगर कोई बड़ा गुनाह कर लेंगे तो क्या आपको हम लोग बंद कर दें, जमीन में गाड़ दें? क्या नहीं ना, एक फंडामेंटल राइट्स होता है, उसकी ह्यूमन राइट्स है, आप उसको भी वायोलेट कर रहे हैं, आप कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे, तो फिर ये कौन सी बात हुई ना।
तो अबू सालेम से जब आपकी बात हुई है तो मानसिक स्थिति कैसी दिख रही थी?
वो काफी परेशान थे क्योंकि वो इतना डर लगा हुआ है कि बोले मैं जेल में जाऊंगा तो पता नहीं मैं अकेला रहता हूँ, पता नहीं ये लोग क्या कर दें। सो ही इज वेरी स्केर्ड, आई मीन ही इज लाइक टेलिंग अस कि ना प्लीज कम टू विजिट मी, अगर कोर्ट का डेट नहीं है तो आके आप मिलो, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा।
अबू सलेम ने विशेष टाडा अदालत में हलफनामा दायर कर जेल अधीक्षक हीरालाल जाधव पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। जानकारी दे रही थी उनकी वकील सबा कुरैशी। नमस्कार भारत, आप सुन रहे हैं निखिल रंजन के साथ और अब वक्त है समाचार पत्रों पर नजर डालने का। संदीप सोनी आ चुके हैं स्टूडियो में समाचार पत्रों के साथ। बताइए संदीप, क्या है आज अखबारों में?
निखिल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी के खिलाफ जंग का वादा किया है, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे अपनी पहली खबर बनाया है। अखबार में जिक्र उन मुद्दों का भी है जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से दिए अपने भाषण में छुआ तक नहीं, जैसे संसद में सरकार और विपक्ष के बीच हालिया गतिरोध, चरमपंथी हमले की घटनाएं और मेक इन इंडिया कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने वन रैंक वन पेंशन पर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन ये योजना कब लागू होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। इससे पूर्व सैनिकों को निराशा हुई है, ये खबर भी हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी पहली खबर को सुर्खी दी है कि प्रधानमंत्री अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ लाल किले लौटे और इस बार स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया का आह्वान किया। वहीं
एक और नया नारा
दिया, जुमला उछाला। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने मोदी के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें वो कह रहे हैं कि काले धन के मामले में किसी के दबाव में नहीं आऊँगा। द हिंदू ने लिखा है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी ने इस बार स्टार्टअप और स्टैंडअप कैंपेन का नया रास्ता चुना है, और जनसत्ता ने अपने पहले पन्ने पर मोदी के भाषण का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि इससे अच्छा तो पिछले साल का भाषण था, मोदी ने इस बार के भाषण में अपने वादों को हकीकत बनाने की राह नहीं दिखाई। इसके अलावा भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में 5 जवानों की मौत की खबर भी जनसत्ता और तमाम दूसरे अखबारों के पहले पन्ने पर है। नवभारत टाइम्स ने इसे नापाक फायरिंग का शीर्षक दिया है और लिखा है कि शनिवार को 3 बार तोड़ा सीज फायर, 5 की मौत, 5 घायल।
बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी जानकारी के लिए। और अब उन खबरों पर नज़र डाल लेते हैं जिन पर आज बीबीसी की दिन भर रहेगी नज़र।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात जा रहे हैं। चीन और अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। ब्राजील में आज राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खर्चों में कटौती और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हजारों लोगों की सड़कों पर उतरने की योजना है। विपक्ष पहले से ही डिल्मा रूसेफ की इस्तीफे की मांग कर रहा है। श्रीलंका में सोमवार को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले देश में 70,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 8 महीने पहले सत्ता खो चुके पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल इंडोनेशिया की जकार्ता में खेली जा रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज फाइनल मुकाबला खेलेंगी। फाइनल में उनका सामना नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मारिन से होगा।
हिंदी सिनेमा ने देशभक्ति के कुछ यादगार गीतों की सौगात हमें दी है। स्वतंत्रता दिवस का समारोह हो या गणतंत्र दिवस का, ये गीत ऐसे कार्यक्रमों की जान होते हैं। और जब हम देशभक्ति से भरे गीतों की बात करते हैं तो हम मनोज कुमार के फिल्मों के गीतों को नहीं भूल सकते। मनोज कुमार और देशभक्ति के गीतों की दिलचस्प दास्तान सुना रही हैं श्वेता सिंह।
स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ गीत हमें गली मोहल्ले, स्कूल और कार्यक्रमों में सुनाई देते हैं।
कहते भी गए।
और उन्हीं में से कुछ गीत हैं उपकार फिल्म का, मेरे देश की धरती, फिल्म शहीद का गीत, ए वतन हमको तेरी कसम। इन फिल्मों और गीतों से नाम जुड़ा है मनोज कुमार का।
ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे।
हिंदी सिनेमा में जब भी देश प्रेम से जुड़ी फिल्मों का जिक्र होता है तो अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार को जरूर याद किया जाता है। मनोज कुमार ने भारतीय सिनेमा को ऐसी फिल्में दी हैं जो देश प्रेम की भावना से भरी हैं।
है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता।
मनोज कुमार का नाम था हरि किशन गोस्वामी। जब हमने मनोज कुमार से पूछा कि हरि किशन गोस्वामी से मनोज कुमार कैसे बन गए, तो उन्होंने कहा,
10 साल की उम्र में मामू ने फिल्म दिखाई जुगनू, दिलीप कुमार साहब थे उसमें उनकी डेथ हो जाती है। फिर 20-25 दिन बाद फिल्म सही दिखाई, फिर बार पोस्टरों पे उसी आदमी की शक्ल थी। मैंने कहा, मामा ये सूरज है। कहने, सूरज नहीं है, ये दिलीप कुमार है। देखो, तो उर्दू में लिखा हुआ था दिलीप कुमार शहीद में। फिल्मों का शौक पड़ गया, समझ में आ गया। तो फिल्म शबनम थी फिल्मिस्तान की, उसमें भी दिलीप साहब थे, उसमें नाम मनोज था उनका। मैंने सोचा कि मैं जब एक्टर बनूंगा तो मैं अपना नाम मनोज कुमार रखूंगा।
मनोज कुमार का फिल्मी सफर शुरू हुआ फिल्म फैशन से। इस फिल्म से मनोज कुमार साहब को कोई खास पहचान नहीं मिली, लेकिन फिल्मी दुनिया में उनका सफर जारी रहा। और फिर पिया मिलन की आस, रेशमी रुमाल, वो कौन थी, हिमालय की गोद में जैसी फिल्में देकर मनोज कुमार साहब आगे बढ़ गए। और फिर आई देश प्रेम से भरी शहीद भगत सिंह पर बनी फिल्म शहीद।
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला।
और इस फिल्म से उनकी छवि एक देश प्रेमी अभिनेता की बन गई।
बचपन में हमने खेल खेलना था भगत सिंह के ऊपर, और मेरा कद वगैरह अच्छा था तो मुझे भगत सिंह का रोल दिया गया। वैसे खूब होती थी। जिस रात को ड्रामा खेलना था, हमने गली मोहल्ले में ही सब थे, घर वाली वो सब बैठे हुए। जब मेरी बारी आने वाली थी स्टेज पे जाने के लिए, तो मैं भाग लिया, मुझे स्टेज फ्राइट हो गया। तो एक खलिश हो रही, तो मैं ये नहीं कर सका। मेरे पिताजी भी कहते थे, और यार तू नकली भगत सिंह भी नहीं बन सका।
मनोज कुमार साहब की खलिश सिने पर्दे पर कैसे उतरी? मनोज कुमार,
उससे पहले 2 फिल्में बन चुकी थी, नहीं चली थी, लेकिन मेरे पास एक स्क्रिप्ट रेडी था। तो मेरे दोस्त केवल पी कश्यप, उन्होंने सुना था, वो उन्होंने जिद की कि मेरे को यही पिक्चर बनानी है। ये क्रेडिट केवल साहब को जाता है, मेरे मुकद्दर में ये था। तब कोई भगत सिंह जी पे कोई ऐसी किताब नहीं थी, तो मेरी जो मेहनत थी 3-4 साल की, वो रंग लाई, फिल्म भी चली और नेशनल अवार्ड मिलने में मैं पहला राइटर हूँ जिसको स्टोरी राइटर का अवार्ड मिला।
और फिर जब शहीद फिल्म के भगत सिंह फिल्म उपकार में भारत कुमार बने, तो प्रशंसकों ने नाम दिया भारत कुमार।
हमारी जनता जनार्दन जो है ना, जब प्यार देने को आ जाए तो फिर वो देखते नहीं, सब कुछ लुटा देते हैं। मैंने तो हरि किशन को मनोज कुमार बनाया था, उन्होंने मनोज कुमार को भारत बना दिया।
शहीद, उपकार, पूर्व और पश्चिम, क्रांति जैसी देश प्रेम की खुशबू में डूबी फिल्में देने वाले मनोज कुमार साहब का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहना है,
सारे साल के त्योहार एक तरफ और 15 अगस्त एक तरफ। लाल किले पे 16 अगस्त को झंडा लहराया था, मेरी आयु 10 साल की थी। मैंने उनको झंडा लहराते देखा है, मैंने आजादी का सूरज निकलते देखा है।
परोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
श्वेता सिंह, BBC दिल्ली।
श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब कार्यक्रम में वक्त है प्रमुख समाचारों का।
BBC समाचार। जापान के सम्राट अकिहितो ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान की भूमिका पर गहरा अफसोस जताया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रही डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा की इराक नीति का समर्थन किया है। इराक की राजधानी बगदाद में सिलसिलेवार बम धमाके हुए हैं, जिनमें कम से कम 20 लोग मारे गए हैं और कई अन्य जख्मी हुए हैं। इटली की नौसेना का कहना है कि भूमध्य सागर में एक नाव में कम से कम 40 प्रवासी मृत पाए गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के विवादित पूर्व प्रमुख हमीद गुल की ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई है। चीन के शहर तियानजिन में बीते बुधवार हुए धमाके में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 100 से अधिक हो गई है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे संदीप सोनी। नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी एक घंटे बाद विश्व भारती में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। स्टूडियो मैनेजर हेमंत कुशवाहा और संदीप सोनी के साथ निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।